You are listening to Indian Scams, only on Audio Pitara with Aditya Raj Sharma. दुनिया में जब भी बड़े स्कैम्स एंड स्कैमर्स की बात होती है तो इटली के चार्ल्स पोंजी और अमेरिका के बर्नार्ड मैडॉफ और ल्यू पर्लमैन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन तीनों ने पूरी दुनिया के शातिर घपलेबाजों को बेहद इंस्पायर किया। वर्ल्ड में ये तीनों फेमस रादर इनफेमस घपलेबाज आज भी फादर्स ऑफ स्कैम्स के रूप में जाने जाते हैं। स्कैम्स का संक्रमण इंडिया में सबसे पहले 1947-48 में पहुंचा था। ये बीमारी देश की जनता के सामने सबसे पहले जीप स्कैंडल के रूप में आई थी। 1948 के जीप स्कैंडल को आजाद भारत का पहला स्कैम कहा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है, हम फैक्चुअली कह सकते हैं कि 1948 का जीप स्कैंडल ही इंडिया का पहला स्कैम था। उसके बाद तो कई कई हुए और होते ही रहे। अगर आज हम बिगेस्ट स्कैमर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ नाम हमें याद नहीं करने पड़ते, स्पॉन्टेनियसली जुबान पर आ जाते हैं। हर्षद मेहता, केतन पारेख, अब्दुल करीम तेलगी, नीरव मोदी, विजय माल्या, राजू रामलिंग एंड सो ऑन। वैसे 10-11 साल पहले इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, भारत का सबसे बड़ा स्कैम है कोल गेट स्कैम, यानी कोयला घोटाला, जिसमें 11 लाख करोड़ का घपला किया गया। अगर मैं उन चंद बड़े स्कैम्स की बात करूं जिनकी वजह से एक विदेशी एनजीओ बर्लिन बेस्ड ने इंडिया को एशिया पैसिफिक रीजन का मोस्ट करप्ट नेशन कहा था, तो वो है अभिषेक वर्मा आर्म्स डील स्कैम, वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम, तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम, द कोलगेट स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, सत्यम स्कैम। मैं एक के बाद एक इन सभी इंडियन स्कैम्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर मैं पहले तेलगी स्कैम यानी स्टैम्प पेपर स्कैम से अपनी बात शुरू करूं तो कुछ यूं कहूंगा कि जो कभी दाने दाने का मोहताज रहा हो वो कैसे कर गया 30,000 करोड़ का घोटाला। सुनकर तो ये बात हवा हवाई लगती है, पर ये बिल्कुल सच्ची बात है। रेलवे स्टेशन पर मूंगफली बेचकर गुजर बसर करने वाला एक आदमी कैसे बन गया इतना बड़ा माफिया, जिसने फर्जी स्टैम्प पेपर्स बेचकर 30,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तेलगी, ये नाम आप सबने सुना ही होगा। उसका पूरा नाम था अब्दुल करीम तेलगी। दुनिया के अन्य बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स की तरह तेलगी भी शायद चार्ल्स पोंजी के पोंजी स्कीम से ही इंस्पायर्ड था। एक्चुअली पोंजी स्कीम ये वर्ड 1919 में चार्ल्स पोंजी नामक एक स्विंडलर यानी ठग के नाम पर गढ़ा गया था। दरअसल पोंजी स्कीम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें कस्टमर्स को बिना किसी जोखिम के बड़ा मुनाफा देने का वादा किया जाता है। इन्वेस्टमेंट से हुई नई इनकम का इस्तेमाल ओरिजिनल इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न अदा करने के लिए किया जाता है, जिसे वैलिड ट्रांजैक्शन के रूप में मार्क किया जाता है। पोंजी स्कीम में पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न उपलब्ध कराते रहना नए इन्वेस्टमेंट के कॉन्स्टेंट फ्लो पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब इस फंड का फ्लो सूख जाता है तो स्कीम खत्म हो जाती है और जाहिर है जिसके बाद इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। चार्ल्स पोंजी की ओरिजिनल स्कीम अमेरिकन पोस्टल सर्विस को सेंटर में रखकर ही तैयार की गई थी। पोस्टल स्टैम्प्स से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स को कहीं और इस्तेमाल किया जाता था। मैंने इसीलिए तो कहा था कि तेलगी भी शायद चार्ल्स पोंजी से ही इंस्पायर्ड था, क्योंकि उसने भी स्टैम्प पेपर्स को ही घोटाले का जरिया चुना था। 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के खानपुर में जन्मे अब्दुल करीम तेलगी के पिता इंडियन रेलवेज में सर्विस करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। माँ ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला था। पूरा परिवार दाने दाने के लिए मोहताज रहता था। छोटी उम्र से ही परिवार की लिविंग के लिए तेलगी ने कई तरह के काम किए, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर फल और मूंगफली भी बेची। आगे चलकर उसने कर्नाटक के बेलगावी यानी बेलगांव से बीकॉम की डिग्री हासिल की, पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे बड़ा आदमी बनना था, बहुत पैसे कमाने थे, चाहे जो भी करना पड़े। तेलगी मुंबई चला गया। वहां कई तरह के काम धंधों से उसने कुछ पैसे जोड़े और वो सऊदी अरब चला गया। उसे बड़ी उम्मीद थी कि वो वहां काफी धन दौलत कमा पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो वो निराश हो गया। वो वापस मुंबई लौट आया। मुंबई लौट आने के बाद उसकी लाइफ ने जो टर्न लिया वो वाकई किसी को भी हैरान कर देगा। मुंबई आकर तेलगी ने गौर किया कि उसके गांव और आसपास के लोगों में दुबई जाने की होड़ सी लगी हुई है। उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोल ली और लोगों को दुबई और सऊदी अरब भेजने लगा। ऑब्वियसली ये काम वो सीधे तरीके से नहीं करता था, इसीलिए इस काम में कई बार उस पर जालसाजी के आरोप भी लगे। इसी के चलते सन 1993 में पहली बार उसे अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात शेयर मार्केट के एक घोटालेबाज रतन सोनी से हुई। रतन सोनी पेशे से एक सरकारी स्टैंप वेंडर था। सोनी ने उसे समझाया कि जेल ही जाना है तो कोई बड़ा हाथ मार के जाए, छोटे मोटे कामों में क्या फंसना। जेल में रतन सोनी ने खूब अच्छी तरह से तेलगी का ब्रेन वॉश किया। तेलगी ने रतन सोनी को अपना उस्ताद मान लिया और आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो गए। सोनी की सलाह पर ही उसने स्टैम्प पेपर्स बेचने का काम शुरू किया, जिसका अच्छा खासा कमीशन उसे रतन सोनी को देना पड़ता था। यहां से शुरू हुआ स्टैम्प पेपर घोटाले का सफर। आगे चलकर एक राजनीतिक दल के नेता की मदद से इनको स्टैम्प पेपर्स बनाने व बेचने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस का नंबर था 12500। इसके बाद दोनों पार्टनर्स ने कई बैंकों में अपने अकाउंट खोल लिए, कई नए ऑफिस खोल दिए। यही वो टाइम था जब दोनों ने नकली स्टैम्प पेपर्स बेचने का काम शुरू कर दिया था। पहले ही साल दोनों ने मिलकर 2.5 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स के साथ 10 करोड़ के फर्जी स्टैम्प पेपर्स बेच डाले। फिर तो नकली स्टैम्प पेपर्स बेच बेच कर ये दोनों करोड़ों कमा रहे थे और उन पैसों से नए नए डिफरेंट बिजनेसेस शुरू कर रहे थे। बट सन 1995 में नकली स्टैम्प पेपर्स पकड़ में आने लगे। मुंबई के कई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई जिसके तार सीधे तेलगी के ऑफिस से जुड़ रहे थे। आखिर एक कलेक्टर ने तेलगी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। तेलगी पकड़ा गया, उसे जेल हो गई। लेकिन अब तक के इस खेल में तेलगी देश के लचर सिस्टम की कमजोरियां जान चुका था। वो पुलिस और प्रशासन को मोटी रिश्वत देकर बेल पर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने वही फर्जी कारोबार अपने एक दोस्त के नाम पर शुरू कर दिया। 1997 में उसने अपने राजनीतिक संपर्कों की मदद से खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोल ली। वैसे उसका पर्पस अब भी नकली स्टैम्प पेपर्स बेचना ही था। उसने सरकारी अफसरों की मदद से स्टैम्प पेपर बनाने वाली सरकारी मशीनों को कंडेम डिक्लेयर करवा दिया और उसे खुद खरीद लिया। कमाई इतनी बढ़ गई थी कि उसने इस काम के लिए कई नए डिग्री होल्डर्स को नौकरी पर रख लिया था। दिन रात चलने लगा नकली स्टैम्प पेपर्स बनाने और बेचने का ये कारोबार। करोड़ों करोड़ों की कमाई हो रही थी। तब जिन्होंने देखा था वो बताते हैं कि तेलगी मुंबई के टोपाज बार में एक बार डांसर पर, जो कि माधुरी दीक्षित जैसी दिखती थी, हर हफ्ते 90-90 लाख रुपए उड़ाया करता था। कई कई लोगों ने इन नकली स्टैम्प पेपर्स की मदद से प्रॉपर्टीज के पेपर्स गलत ढंग से रजिस्टर करवाए। लोगों ने कई फर्जी इंश्योरेंस पेपर्स तक बनवाए। जब भी तेलगी के खिलाफ कोई शिकायत होती तो वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता बदल देता। उस समय उसे कोई रोक नहीं पा रहा था, तेलगी को किसी का डर नहीं था। लेकिन स्कैमर्स की हो ना हो, पर स्कैम्स की लाइफ शॉर्ट होती है। सन 2000 में बैंगलोर में जब दो आदमी फर्जी स्टैम्प पेपर्स के साथ पकड़े गए तो पूछताछ में दोनों ने अब्दुल करीम तेलगी का नाम लिया। नवंबर 2001 में तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बैंगलोर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पूछताछ में तेलगी ने बड़े बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों का नाम लिया तो बहुत बवाल मचा। जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया तब जाकर देश को इस बड़े स्कैम का पता चला। जांच के दौरान तेलगी के नाम पर 36 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज और अलग अलग कंट्रीज में 100 से भी ज्यादा बैंक खातों का पता चला। 30,000 करोड़ के स्कैम ने देश को हिलाकर रख दिया था। सन 2006 में तेलगी व उसके अन्य 30 साथियों को 101 करोड़ का जुर्माना व 30 साल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए अपने आखिरी दिनों में तेलगी कई बीमारियों का शिकार हो गया था। मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के चलते 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलोर के एक सरकारी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। चाणक्य कह गए हैं कि गलत कार्यों से कमाया हुआ पैसा ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक ही व्यक्ति के पास रह सकता है। 11वें वर्ष से उस व्यक्ति के धन का विनाश होना शुरू हो जाता है। इंडियन स्कैम्स एंड स्कैमर्स की इस कड़ी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।